इन परिस्थितियों में शिल्प का विकास हुआ तथा शिल्प के विकास से व्यापार का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इंग्लैंड और हॉलैंड की इटली पर विजय ने एक बार फिर इन दोनों देशों की उत्पादकता की शक्ति को प्रमाणित किया। हॉलैंड का फ्लोइट जहाज व्यापार पर हावी क्यों हुआ? उसका एक कारण उसके निर्माण लागत कम होना भी था। ये जहाज बड़े पैमाने पर बनाए गए और क्रेनों और पवन चक्कियों का सहारा लिया गया। यह संयुक्त शेयर कंपनियों की सहायता से संभव हुआ। यदि इंग्लैंड अमेरिकी अटलांटिक उपनिवेशों व दक्षिणी यूरोप से व्यापार संबंध कायम कर सका तो उसका एकमात्र कारण उसका सुदृढ़ निर्माण पक्ष रहा था। उसका सस्ता कपड़ा और लोहे का सामान सारे महाद्वीपों में बिकता था। इंग्लैंड और हॉलैंड की आर्थिक उन्नति की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि इससे सक्रिय और साहसी बुर्जुआ लोगों की उत्पत्ति हुई। इन्होंने शेयर कंपनियाँ स्थापित की, वित्तीय संस्थाएं गठित की, सूचनाओं के आदान प्रदान का जाल तैयार किया, नई जिंसें, नए बाजार, नए व्यापार मार्ग और नए जीवन सिद्धांत, मुक्ति संगठन, व्यक्तिवाद, वैज्ञानिकता, प्यूरिटनवाद सामने आए। दार्शनिक इस जगत को कालचक्र, मनुष्य को एक यंत्र तथा परमात्मा को इस कालचक्र का निर्माण करने वाले कारीगर के रूप में देखने समझने लगे। बाकी यूरोप में बुर्जुआ वर्ग ने विपरीत नीति अपनाई। उनके सामने सक्रिय अर्थव्यवस्था और उत्पादन बढ़ाकर लाभ कमाने का विकल्प न था। शायद यही कारण होगा कि यहाँ के संपन्न लोगों ने पूंजी का निरर्थक निवेश किया और सामंती मूल्यों को अपनाने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने अपना धन उत्पादन में लगाने के बजाय उसे मुख्यतः सरकारी ऋण, जमीन खरीदने, सामंती पद खरीदने और अपने रहन सहन या विलास की वस्तुओं में लगाया। कृषि एवं निर्माण में सुदृढ़ उत्पादन आधार न होने की वजह से स्पेन, पुर्तगाल एवं इटली अमेरिका से धन की आमद के बावजूद विकास नहीं कर पाए। उनको यह धन ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड से वस्तुओं को खरीदने में खर्च करना पड़ा। इस तरह ब्रिटेन इत्यादि देशों में निर्माण व्यवस्था की उन्नति हुई और दूसरी ओर स्पेन इत्यादि देश केवल उनको धन पहुँचाने के माध्यम बनकर रह गए। पूंजीवादी व्यवस्था में धन अपने आप में कुछ नहीं होता, वह तो सदा उत्पादन की ओर आकर्षित होता है और उत्पादन की वस्तुओं में बदला जाता है। धन उत्पादन का साधन है, सोना चांदी नहीं।